स्वतसवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मनुष्य की विशेषता ज्ञान, ज्ञान हो तब ज्ञान विहीन होने की वजह से चेतन होते हुए भी सब प्राणी को नीचे दर्जे में गिना जाता है। जीवन तो वनस्पति में भी पर ज्ञान नहीं, दूसरे भी हैं, मक्खी हैं, मच्छर हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, जीवन है, उनमें भी जिंदगी, मेढक में भी जिंदगी है, मछली में भी जिंदगी है, कछुए में भी जिंदगी है, चिड़िया में भी जिंदगी है, फिर उनको क्यों हम घटिया दर्जे का मानते हैं? उनकी एक ही कमी है कि उनको ज्ञान की कमी है। मनुष्य ज्ञान का देवता माना गया, ज्ञान की वजह से, मननशील होने की वजह से, विचारशील होने की वजह से मनुष्य का स्तर ऊंचा उठा है। कल्पना कीजिए, प्राचीन काल में जब मनुष्य वन मानुष रहा होगा, जब उसको ज्ञान नहीं रहा होगा, सामाजिकता का ज्ञान नहीं रहा होगा और जीवन की जिम्मेदारियों का ज्ञान नहीं रहा होगा, अपने गौरव गरिमा और गुणकर्म स्वभाव की विशेषताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं रही होगी, तब वो भी जैसे कि डार्विन साहब कहते थे बंदर की औलाद, वास्तव में बंदर की औलाद की तरीके से इंसान भी रहा होगा तब। लेकिन आज सृष्टि का स्वामी बना हुआ है, किस वजह से? हाथ पाँव बड़े हो गए? नहीं, हाथ पाँव बड़े नहीं हुए, हाथ पाँव उसकी वही हैं, हाथ पाँव में कोई अंतर नहीं हुआ है, लंबाई चौड़ाई में कोई अंतर नहीं हुआ है, नाक का नाक की बनावट में कोई अंतर नहीं हुआ है, लेकिन जो अंतर हो गया है प्राचीन काल की तुलना में आज, वो आदमी का ज्ञान बढ़ता हुआ चला गया है। ज्ञान की दो धाराएं हैं और दोनों को ही बढ़ाना चाहिए। एक धारा वो है जो हमारे जीविका पैदा करने के लिए काम आती है, इसको शिक्षा कहते हैं, लोक व्यवहार उसी के आधार पर सीखा जाता है। बच्चों को स्कूल में जो हम पढ़ाते हैं, ये शिक्षा पढ़ाते हैं। शिक्षा का क्या मतलब? शिक्षा का मतलब है उनको लोकाचार आए, उनको ये मालूम पड़े संसार की बनावट क्या है, भूगोल क्या है, इतिहास क्या है, दुनिया में इंसानों की चाल चलन क्या रहे हैं, दुनिया में किस तरीके से उतार चढ़ाव आते रहे हैं, ये हम इतिहास से सीखें। पेड़ कैसे पैदा होते हैं, ये सृष्टि क्या है, राजनीति क्या है, समाज क्या है, ये नागरिक कर्तव्य क्या है, जीविका उपार्जन कैसे करनी चाहिए, अर्थशास्त्र क्या है वगैरह, बातें सीख करके हम जीविका उपार्जन कर सकते हैं और जीविका उपार्जन की तरीके से लोक व्यवहार में प्रवीण बन सकते हैं। लोक व्यवहार में प्रवीण बनने के संबंध में एक, जीविका उपार्जन के संबंध में दो, जो जानकारियाँ हमको मिलती हैं उसका नाम शिक्षा है। आवश्यक है शिक्षा, आवश्यक है, शिक्षा न होगी तो आदमी अपने शरीर को संभाल किस तरीके से पाएगा, समाज के साथ में तालमेल बिठा किस तरीके से पाएगा, अपनी अकल का उपयोग किस तरीके से कर पाएगा, ये सब जानकारियों के लिए शिक्षा तो आवश्यक है, लेकिन शिक्षा से ही काम चलने वाला नहीं है। शरीर के जीवन के लिए, भौतिक जीवन को ठीक बनाए रहने के लिए शिक्षा बेहद ज़रूरी है, लेकिन ये केवल भौतिक जीवन ही तो नहीं है, एक और भी तो हमारा जीवन है जिसको हम आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। चेतना भी तो कोई हमारे भीतर है, आत्मा भी तो कोई अंदर हमारे भीतर है, विवेक भी तो कोई हमारे भीतर है, संवेदनाएँ भी तो हमारे कोई भीतर हैं। इन सबको ठीक रखने के लिए एक और चीज़ की ज़रूरत है जिसका नाम है विद्या। ज्ञान की धारा उसी को कहते हैं जिसको विद्या कहा गया है। विद्या का नाम, पूरा नाम अध्यात्म विद्या, आप माने तो अभी हर्ज नहीं है। प्रथम भरा प्रज्ञा इसको कहें तो अभी कोई हर्ज नहीं है। विवेक आप इसको कहें तो भी हर्ज नहीं है। इसको आप गायत्री कहें, प्रज्ञा कहें तो भी हर्ज नहीं है। वास्तव में महत्व उसी का है। जानकारियों के बारे में, दुनिया भी जानकारियों के बारे में तो ढेरों आदमी ऐसे हैं जिनकी जानकारियाँ बहुत हैं, होशियार बहुत हैं। आदमी विद्यावान कम है क्या दुनिया में? कलाकार कम है क्या दुनिया में? चतुर आदमी दुनिया में कम है क्या? क्रियाकुशल लोगों की कमी है क्या? पर वो स्वयं के लिए और दूसरों के लिए क्या मुफीद साबित हुए, आप बताइए ना। जेल खाने में पड़े हुए लोगों को आपने देखा है? एक से एक होशियार आदमी, एक से एक समझदार आदमी वहीं कैद खाने में। जालसाजों में पढ़े लिखे ही आदमी ज़्यादा होते हैं। ना समझ आदमी जालसाजी नहीं कर सकते, ना समझ आदमी जेब कटी कर सकते हैं और छोटे मोटे काम कर सकते हैं, पर दुनिया में जो बड़े बड़े जालसाजियाँ हुई हैं ये पढ़े लिखे लोगों ने की हैं। तो शिक्षा की बात मैं नहीं कहता, शिक्षा अपनी जगह पर मुबारक, मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जहाँ आप लोगों की सेवा में मैं कुछ बात कह रहा हूँ, विद्या के बारे में कह रहा हूँ। आपको विद्या का महत्व समझना चाहिए। विद्या का अगर महत्व समझ सके तो मजा है। विद्या से क्या मतलब? विद्या से मतलब यह है कि आप अपने विचारों का इस्तेमाल किस तरीके से करें, आप अपने शरीर का इस्तेमाल किस तरीके से करें, साधनों का इस्तेमाल कैसे करें, परिस्थितियों का उपयोग किस तरीके से करें, अपने पास जो सामान और साधन मिला हुआ है या मिल सकता है आप उसका ठीक तरीके से इस्तेमाल किस तरीके से कर पाएंगे, बस इसी का नाम विद्या है। इसी का नाम विद्या है। इसके लिए सामान्य लोक ज्ञान से काम नहीं चलता। इसी का नाम विद्या है। इसी का नाम विद्या है। इसके लिए सामान्य लोक ज्ञान से काम नहीं चलता। इसके लिए आदमी को थोड़ा ऊंचे स्तर पर बैठ करके विचार करना होता है और ये देखना पड़ता है कि इंसान की गरिमा और इंसान की इमारतता की सुरक्षा किस तरीके से की जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए, बस इसी का नाम विद्या है। अगर विद्या किसी को मिल जाए तब फिर धन्य हो जाते हैं। शास्त्रों में विद्या की महत्ता के लिए यानी कैसे कहा गया है, विद्या अमृत मश्नुते, विद्या को अमृत कहा गया है। जिसने विद्या प्राप्त कर ली है उसको अमृत मिल गया। जो ठीक तरीके से उचित और अनुचित का हल जानता है उसके लिए फिर दुनिया में कोई चीज़ मुश्किल नहीं रह जाती। जिसको ये मालूम है समस्याएँ किस तरीके से पैदा होती है और उसके समाधान क्या हैं, ये लोगों को मालूम नहीं है। लोगों का ये ख्याल है कि परिस्थितियों की वजह से समस्याएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन सही बात ये नहीं है। परिस्थितियों की वजह से समस्या उत्पन्न नहीं होती, दूसरों की वजह से परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती, बल्कि आदमी की मनस्थिति इसकी जिम्मेदार है। ये बात आमतौर से लोगों की समझ में नहीं आती। महापुरुषों के इतिहास को जब आप पढ़ें तो आप आसानी से जान सकते हैं कि समस्याएँ कहाँ से उत्पन्न हुई और आदमी किस तरीके से बढ़े। आपने अब्राहम लिंकन का नाम पढ़ा है ना, जॉर्ज वाशिंगटन को जानते हैं ना, गांधी जी के जीवन का इतिहास पढ़ा है ना, बुद्ध का इतिहास पढ़ा है ना, इनकी परिस्थितियों में क्या खास बात थी बताई, और किस सामान्य लोगों के बराबर अथवा उससे भी गई हुई थी परिस्थितियाँ थी, लेकिन गई हुई थी परिस्थितियों में से भी उनकी मनस्थिति इतनी शानदार मनस्थिति हुई कि न्याने कहाँ से कहाँ उठते और कहाँ से कहाँ बड़े होते हुए चले गए। शंकराचार्य में क्या विशेषता थी आप बताइए, समर्थ गुरु रामदास में क्या विशेषता थी बताइए, कबीर में क्या क्या परिस्थितियाँ थी बताइए, कबीर को कौन कंधे पर उठा के ले गया था बताइए। केवल मनस्थिति थी जिसमें विवेकशीलता मुख्य है। मनस्थिति में एक चीज़ अगर आ जाए कि विवेक आदमी के भीतर आ जाए तो अपनी समस्या को हल कर सकता है और दूसरों की समस्या को हल कर सकता है और अपने पास जो साधन सामग्री मिली हुई है इसका ठीक तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। आदमी को समय मिला हुआ है, आदमी को श्रम मिला हुआ है, आदमी को समय मिला हुआ है, आदमी को कैसा अच्छा खासा शरीर मिला हुआ है, आदमी को कैसा बढ़िया वाला दिमाग मिला हुआ है, आदमी को कैसा वाला कुटुंब मिला हुआ है और आदमी को कैसा कार्यक्षेत्र मिला हुआ है, इस सारे के सारे क्षेत्र का उचित और अनुचित का समाधान हम निकाल नहीं पाते। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बस यहीं भटक जाते हैं और यहीं भटक जाने की वजह से हम कहीं के मारे कहीं कहीं जा पहुँचते हैं। जो हमको करना चाहिए वो हम कर नहीं पाते और जो हमको नहीं करना चाहिए वो हम कर पाते हैं। तो इसके क्या वजह है? इसका वजह ये है कि हमारे पास एक ख़ास किस्म का प्रज्ञा नहीं है जिसको हम विवेक कहते हैं। ज्ञान का अर्थ या विवेक, ज्ञान का अर्थ वो नहीं है, नॉलेज नहीं है, ज्ञान का अर्थ है विजडम। विजडम अगर आपके पास है तो आप हर चीज़ को उचित और अनुचित के कसौटी पर कर सकते हैं और सिर्फ उसी बात को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं जो आपको करनी चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि हम दूसरों को काम करते देखकर दूसरों को के रास्ते पर चलने लगते हैं। ये काम है तो अंधी भेड़ों का है, इंसान का थोड़ी है। इंसान जहाँ ज़्यादा लोग चलें वहीं हम चलें, जो दूसरे लोग करें वही हम करें, दूसरे लोग कहें वही हम करें, दूसरे लोग जिस तरीके से मरें वही मरें, ये भी कोई ढंग, ये कोई ढंग नहीं। समझदारी का और आध्यात्मिकता का तकाजा आदमी को यह है कि प्रत्येक परिस्थिति के बारे में गुण के हिसाब से उसके परिणाम के हिसाब से स्वयं विचार करना चाहिए। स्वतंत्र चिंतन ही का नाम है। स्वतंत्र चिंतन अगर आपके पास है तो आप उचित और अनुचित का निर्धारण कर सकते हैं। अपने यहाँ गायत्री माता का आपको शिक्षण दिया जाता है। आप यहाँ इस उपासना में गायत्री का शिक्षण प्राप्त करते रहे, गायत्री की उपासना में भी लगे हुए हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं गायत्री किसके कंधे पर सवार होती है और कौन गायत्री को अपने इशारे पर नचाए नचाए फिरता है। आपने गायत्री माता की तस्वीर को आप जो ध्यान कहते हैं, इस तस्वीर में उसका वाहन देखा है ना आपने, एक वाहन का नाम है हंस। हंस किसे कहते हैं? हंस के ऊपर गायत्री माता सवारी करती हैं। ये बात शायद आपकी समझ में ना आए, क्योंकि इंसान की बराबर शरीर जिसका है वो जानवर पर पशुओं पर सवारी तो कर सकते हैं, लेकिन पक्षियों पर सवारी नहीं कर सकते। घोड़े पर आप बैठ सकते हैं, गधे पर बैठ सकते हैं, हाथी पर बैठ सकते हैं, ऊँट पर बैठ सकते हैं, भैंसे पर बैठ सकते हैं, इन पर तो बैठ सकते हैं, लेकिन आप बताइए किसी पक्षी पर जिसका वजन बेचारे का नहीं की बराबर है, तो उसके ऊपर आप कैसे आदमी बैठ पाएगा? मुश्किल है, लंबाई चौड़ाई इतनी नहीं है। और छोटी चीज़ गेंद पीठ पे बांधने हंस की बात तो बात अलग है, लेकिन इंसान के बराबर कोई आदमी देवता बड़ा अच्छा बैठेगा तो कैसे बैठेगा? ये एक अलंकार है। इसमें ये बात बताया गया है कि हंस उस व्यक्ति का नाम है जो उचित और अनुचित का फर्क करना जानता है। आपको उचित और अनुचित का फर्क करना चाहिए। लोगों के रास्ते पर चलने की बनस्बत आपको अलग खड़े होकर के देखना चाहिए कि मुनासिब रास्ता क्या है, मुनासिब तरीके क्या हैं, मुनासिब क्या है। लोग गलती करें तो आप क्या कर सकते हैं? लोग तो गलतियों का ही जमाना है। आप पानी के बहाव में तिनके की तरीके से बहते चले जाएं, भला ये भी कोई समझदारी है? आप हवा में उड़ते हुए पत्तों के तरीके से उड़ते हुए चले जाएं, भला ये भी कोई समझदारी हुई? आपको वजनदार होना चाहिए, आपका गौरव होना चाहिए, आपका वजन होना चाहिए। गौरव का मतलब वजन होता है, भारीपन होता है, तो भारी भरकम होना चाहिए। भारी भरकम का मतलब यह है कि आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में फैसले स्वयं करने चाहिए। अपने रास्ते का चुनाव करने वाले में आपकी हिम्मत आपकी सहायक होनी चाहिए। भगवान और आपका ईमान, ईमान और भगवान दो चीज़ें ऐसी हैं जिनकी सहायता से आप बड़े से बड़े फैसले कर सकते हैं। दुनिया में तो आमतौर से एक गलत काम होते हैं, लोग तो सिर्फ अपने आप को शरीर समझते हैं और शरीर की खुशहाली के लिए जो भी बुरे से बुरा काम हो सकता है सब करते हैं। लोग तो ऐसे बेअकल हैं कि लोगों को आज का फ़ायदा दिखाई पड़ता है, कल का नुकसान कहाँ दिखाई पड़ता है? जितनी भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं इसमें क्या बात है? आप ज़रा बताइए, आज का फ़ायदा कल का नुकसान आप भी ये करेंगे ना? लोगों के रास्ते से हटिए, लोगों के रास्ते से हट करके अलग खड़े होकर के नए ढंग से विचार करना शुरू कीजिए कि क्या मुनासिब है, क्या मुनासिब नहीं है। आपका भविष्य किन किन बातों से बनता है और किन बातों से बनता नहीं है, अगर आप ये बात तय करने लगेंगे तो मैं आपको ज्ञानवान कहूँगा। ज्ञानवानों की आपने तारीख पढ़ी है ना, भगवान बुद्ध का नाम सुना है ना, भगवान बुद्ध में क्या विशेषता हुई, भगवान से क्या वरदान मिला, उनको क्या विशेष संपदा मिली? आप उनके जीवन को पढ़िए। बोध वृक्ष के नीचे, एक पेड़ के नीचे, जिसके नीचे उन्होंने तप किया था, उनको एक ख़ास चीज़ मिल गई। उस चीज़ ख़ास चीज़ का नाम था विवेक। दूर की बात समझने का उनको मादा मिल गया। उन्होंने कहा सारी दुनिया से प्रभावित हमको नहीं है, होना नहीं है, हमको दूसरों को प्रभावित करना है। दूसरे जो मुनासिब कहें मान भी सकते हैं, लेकिन अधिकांश बातें खासतौर से जीवन यापन करने के संबंध में, जीवन की संपदा को उपयोग करने के संबंध में अधिकांश लोगों की राय गलत है, लोगों के ढर्रे गलत हैं। उन्होंने अपने आप को भगवान बुद्ध ने अलग से खड़ा करके शुरू किया और जमाने की ओर से आंखें बंद कर लीं। आपने ध्यान मुद्रा देखी है ना, भगवान की ध्यान मुद्रा का मतलब यही है कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, आंखें बंद करके और फिर स्वयं अपने भीतर देखा और अपनी जिम्मेदारियों को देखा, अपने भविष्य को देखा, अपने कर्तव्यों को देखा और उन्होंने वो फैसले किए जिसके आधार पर एक सामान्य राजकुमार भगवान का अवतार कहलाने में समर्थ हुआ। उस जमाने में क्या होता था उन्होंने ज़रा भी विचार नहीं किया। उन्होंने ये कहा मुनासिब क्या है, जो मुनासिब था वही उन लोगों से कहा, क्योंकि यज्ञों में हिंसा होती है ना, हम हिंसा नहीं करेंगे। यज्ञ तो यज्ञ की बात वेदों में लिखी है, तब भगवान बुद्ध वेदों के बारे में जानकार नहीं थे, तो उन्होंने कहा वेद में ऐसा लिखा है तो हम वेद को आपको नहीं मानना चाहिए। फिर लोगों ने कहा वेद तो भगवान बनाए हैं, तो उन्होंने ये कहा अगर भगवान ने ऐसे वेद बनाए हैं जिसमें कि नैतिक सिद्धांतों का परिपालन नहीं हुआ है तो अपने ऐसे भगवान को मानने की आवश्यकता क्या है। फिर उन्होंने भगवान के मानने से इनकार कर दिया। कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने विवेक को बुद्ध शरणं गच्छामि नाम ही उनका बुद्ध रखा गया, जनजात नाम बुद्ध नहीं था उनका, लेकिन विवेक बुद्ध का अर्थ है या विवेक ठीक वास्तविकता को उन्होंने अंगीकार कर लिया और उन्होंने ये फैसला किया जो वास्तविकता होगी सच्चाई होगी हम सिर्फ उसी बात को मानेंगे और बातों को नहीं मानेंगे। इसी का नाम है आत्मज्ञान, इसी का नाम है ब्रह्म विद्या। इसी का नाम है प्रज्ञा, इसी का नाम है स्तंभरा, स्तंभरा है इसी को विद्या का विद्या कहा गया है। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा था कि आपको शिक्षा प्राप्त कर ली होगी, बहुत कर ली होगी और करनी चाहिए, लेकिन आप विद्या के बारे में वंचित न रहिए। गायत्री की महत्ता आपने जानी है तो आप उसका वाहन बनना शुरू कीजिए। उसके वाहन की दो ही तो विशेषता है, एक तो यह है कि नीर और खीर को अलग कर देता है, पानी और दूध को अलग कर देता है। इस दुनिया में जो कुछ भी मिला हुआ है घपला है, सब गुड़ गोबर मिला हुआ है। कहीं सच्चाई का की झलक दिखाई पड़ती है और उसी के साथ में झिठाई और बेईमानी का कितना गहरा पुट दिखाई पड़ता है। आप अलग किस तरीके से करेंगे, आपकी विवेकशीलता के माध्यम से संभव है कि आप दोनों को अलग कर दें, नहीं तो अलग नहीं हो सकेंगे। दूध और पानी मिला ही चला जाएगा। सिंचाई की थोड़ी सी झलक और बेईमानी का अधिक अधिक से अधिक मादा, यही तो लोक व्यवहार है, दुनिया यही तो है। आप अलग कीजिए और हंस बनने की कोशिश कीजिए। ये तो आपकी समझ की बात हुई, अकल आपको उचित और अनुचित का फर्क करना जाने। और एक और इससे आगे वाली बात आगे आती है, ग्रहण आप क्या करें, छोड़ें क्या, फैसला करना काम नंबर एक और व्यवहार में उतारना काम नंबर दो। व्यवहार में उतारने के बारे में भी हंस का जो प्रतीक बनाया गया है वो ये बनाया गया है कि मोती खाता है, कीड़े नहीं खाता। अर्थात जो चीज़ें मुनासिब हैं, जो चीज़ें सही हैं, बस सिर्फ उन्हीं को अपनी ज़िंदगी में ग्रहण कर देता है, बाकी चीज़ों को के बारे में इनकार कर देता है, नहीं ये हमको चाहिए नहीं। राजहंस के बारे में ये बताया गया है कि वो या हंसा मोती चले या लंघन मर जाए। लंघन मरना ठीक है, अगर आप ईमानदारी से नहीं कमा सकते, मुनासिब ज़िंदगी नहीं जी सकते, तो ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा। आप नहीं जीने से मेरा मतलब यह है आप गरीबी में गुजारा कर लें, कंगाली में गुजारा कर लें, तकलीफ़ में गुजारा कर लें। तकलीफ़ में गुजारा ढेरों आदमी करते हैं, कोई हरी बीमारी से करता है, कोई जेल खाने चला जाता है, किसी के बाल बच्चे ख़राब हो जाते हैं, किसी के ऊपर और मुसीबतें आती हैं। ढेरों आदमी इस दुनिया में ऐसे हैं जो किसी वजह से मुसीबत उठाते हैं। आप सच्चाई की वजह से, ईमानदारी की वजह से और दयानतदारी की वजह से अगर मुसीबत उठा लें तो क्या अर्थ की बात है, यहाँ तक क्या मुसीबत उठाने तक के लिए तैयार है। आमतौर से इसमें मुसीबत उठाने की जैसी कोई बात है नहीं, आप किफ़ायतशाली से रहें, खर्च अपना कम मान के चलें, महत्वाकांक्षाएँ को आप गिरा करके रहें, तो आपकी ज़िंदगी में फिर कोई दिक्कत नहीं आ सकती। ज्ञान यही सिखाता है आपको कि हम अपना रवैया बदल दें तो जिसके बारे में हमको शिकायतें हैं, दुनिया हमको ऐसा हैरान करती है, दुनिया ऐसा हैरान करती है, दुनिया ऐसा हैरान करती है, अगर आप दुनिया के बारे में गौर करने की बनस्बत अपनी गुणकर्म स्वभाव के बारे में विचार करना शुरू करें, अपनी आत्मा की देखभाल करना शुरू करें और ये विचार करें कोई कमियां हमारे भीतर तो नहीं है, अगर आप अपनी कमियों को सुधारने की आप बाबत तैयार हो जाएँ तो आप देखेंगे सारी दुनिया किस तरीके से बदल गई। जो दुनिया आपको गंदी मालूम पड़ती थी, जलील गलीज मालूम पड़ती थी, वही जलील और गलीज दुनिया आपको अपना दृष्टिकोण बदल देने के बाद में कैसी खूबसूरत मालूम पड़ेगी। आप गुलाब के फूल आप भौने की तरीके से इस किसी बगीचे में जाएं तो बगीचा कितना सुहावना मालूम पड़ेगा। अगर उसी अपनी दृष्टि को गुबरीले कीड़े की तरीके से जाएं तो उसी बगीचे में आपको ढेरों के ढेरों गलाजत पड़ी हुई मालूम पड़ेगी, गंदगी मालूम पड़ेगी। आप अपना दृष्टिकोण क्यों नहीं बदल लेते, इस दुनिया में क्या चीज़ नहीं, इस दुनिया में संतों की कमी है, सज्जनों की कमी है, शराफत की कमी है, भलमन साहत की कमी है, नेक कामों की कमी है, नहीं कहीं कमी नहीं है, लेकिन आपका दृष्टिकोण जो गंदा है, दृष्टिकोण की वजह से आपका मन वहीं जा पहुँचता है जहाँ दुनिया में गंदगी है। ये तो नहीं कहते कि दुनिया में गंदगी नहीं है, दुनिया में पाप नहीं है, दुनिया में असहयोग नहीं है, दुनिया में गैर वफादारी नहीं है, तो मैं नहीं कहता, लेकिन आप संपर्क रखिए ना, फिर जिनसे आप संपर्क रखेंगे वही चीज़ तो खिंचती हुई चली आएंगी। जिन लोगों ने गंदे लोगों से संपर्क रखा है उनको ज्वारी दिखाई पड़ते हैं, चोट दिखाई पड़ते हैं, लफंगे और चक्के दिखाई पड़ते हैं, और बहुत से ऐसे आदमी हैं जिन्होंने कि अपने ऊंचे ख्यालातों से रिश्ता रखा है, उनके सामने अच्छी किताबें ही आती हैं, अच्छे सज्जन ही आते हैं, अच्छी परिस्थितियाँ ही आती हैं, अच्छे मौके ही सामने आते हैं। आप अपने आप को बदल लीजिए ना, अपने आप को बदल लेने के बारे में अगर आपको जानकारी हो तो इसका नाम विद्या है। विद्या उस चीज़ का नाम है जो दुनिया भी जानकारियों के संबंध में नहीं अपनी विशेषताओं के संबंध में ज्ञान कराती है, न केवल विशेषताओं के बारे में ज्ञान कराती है बल्कि ये बताती है गुत्थियाँ भीतर से पैदा होती हैं, बाहर से नहीं। जड़ों से पेड़ पैदा होता है, हवा से नहीं। हवा से पेड़ को सहायता तो मिलती है, पर लेकिन असल में उसको खुराक जो मिलती है जड़ों से मिलती है। आदमी के भीतर जो कुछ है वही उसकी जिंदगी के विकास करने का मूलभूत आधार है। इस मूलभूत आधार को हम स्वयं कीजिए ना। बाहर के लोगों के लिए क्यों आप खुशामद कहते हैं, बाहर के आदमियों के लिए क्यों आप ये देखते हैं इनका सहयोग हमको मिला कि नहीं मिला, दूसरों का सहयोग न मिला तो नहीं भी सही, दूसरे आदमी अच्छे नहीं है तो न भी सही। आप अच्छे बन जाइए ना, आप अपना दृष्टिकोण ठीक कर लीजिए ना, आप अपना रवैया ठीक कर लीजिए ना, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाइए ना, फिर आप देखेंगे किस तरीके से जिसकी आपको शिकायतें थी सारी शिकायतें दूर हो गई। सूर्य इसका नाम विद्या है। अपना समय का उपयोग करना सीख, अपने शरीर का उपयोग करना सीख, अपनी अकल का उपयोग करना सीखिए, अपने प्रभाव का उपयोग करना सीखिए। भगवान ने जो कुछ भी दिया है उन सब चीज़ों का ठीक इस्तेमाल करना सीखिए। जरा सीखिए तो सही, आप अपने आप का ठीक चीज़ों का इस्तेमाल कर लें, फिर आपके सामने वो ढेरों की ढेरों समस्याएं जो कभी आपको आर्थिक तंगी के रूप में दिखाई पड़ती है, कभी बीमारी के रूप में दिखाई पड़ती है, कभी मान अपमान के रूप में दिखाई पड़ती हैं, कभी लोगों के सहयोग के रूप में दिखाई पड़ती हैं, कभी क्या दिखाई पड़ती हैं, सब दिखाई पड़ती हैं, आप उन सारी समस्याओं का मुकाबला कर सकते हैं अगर आपने अपने आप को सही करने का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उस समझदारी को अपने जीवन में धारण कर लिया है। बड़े आदमी हैं, मानिए आप बड़े आदमी हैं, तो बड़े आदमियों के साथ में आप दूसरे सलूक कर सकते हैं, दिक्कत क्या है। आप एक डॉक्टर की तरीके से उनके साथ में रवैया करना शुरू कर दीजिए। बुरे आदमी हैं तो बीमार भी तो बुरे आदमी हैं, उन बीमारियों से आप लड़िए और उसके बीमार की हिमायत कर दीजिए। ये हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। आप बैर कर रखें तो आप केवल बुराइयों से बैर रखें। हमला जो आप पर हुआ है चारों से बुराइयों ने किया है। व्यक्ति को और बुराइयों को अगर फर्क करना सीख लें तो आपको मैं ज्ञानवान कह सकता हूँ। ज्ञानवान आप कहेंगे तो आप ज्ञानवान जिस दिन आप बनेंगे उस दिन आपका दर्द दूर हो जाएगा, क्योंकि आप बड़ों के साथ में मुकाबला करने की तुलना में अपने छोटों के साथ मुकाबला करना शुरू कर देंगे। फिर आपको ये मालूम पड़ेगा आप मालदार हैं, आप अमीर हैं, आप संपन्न और भाग्यवान हैं। अगर आप बड़ों के साथ में मुकाबला करते रहेंगे तो ये मालूम पड़ेंगे हम उनके बराबरी के नहीं हैं, उनकी तुलना में गरीब हैं, उनके तुलना में गरीबीते हैं, उनके तुलना में दुखी हैं। तुलना पर की तो बात है, न कोई गरीब है दुनिया में न कोई अमीर है। जो आदमी अपने मुकाबला अमीरों से करता है वो गरीब है, जो गरीबों से मुकाबला करता है अमीर है। जब अमीरी और गरीबी की कोई व्याख्या नहीं हो सकती तो फिर आप ऐसा क्यों ना करें, अपनी परिभाषा को भी बदल दें, अपने सोचने के तरीके को भी बदल दें। आप अपने आप को सोचने के तरीके को ठीक तरीके से बदल दें और अपनी रीति नीति में आवश्यक सुधार कर लें तो मैं आपसे ये कहता हूँ आपकी सारी की सारी गुत्थियों के समाधान होंगे। आप सुखी जीवन जिएंगे, आप शांति का जिंदगी जिएंगे, आप खुशी की जिंदगी जिएंगे, आप खुशहाली की जिंदगी जिएंगे। इसीलिए विद्या की ओर आपको गौर करना चाहिए। आपको अपनी आंतरिक स्थितियों के बारे में देखभाल करनी चाहिए, अपने गुण कर्म स्वभाव का पुनर्निरीक्षण और निर्धारण करना चाहिए। आपको अपने गतिविधियों के बारे में दृष्टिकोण के बारे में विचार करना चाहिए कि इसमें गलतियां कहाँ हैं, जहाँ कहीं गलतियां हैं अगर आप उसको सुधार पाएँ तो फिर मैं आपको ये कहूँगा आपको एक ऐसी चीज़ हाथ लग गई जिसके आधार पर आप खुशी की ज़िंदगी जिएंगे, शांति की ज़िंदगी जिएंगे, मोहब्बत की ज़िंदगी जिएंगे, प्यार की ज़िंदगी जिएंगे और ऐसी ज़िंदगी जिएंगे जिसमें आपकी खुशी उन सब लोगों को मिले जो आपके नज़दीक आते हों, जो आपसे संबंध रखते हों। आपके घर वाले आपसे बेहद खुश देखे जाएंगे अगर आप विवेकशीलता का रास्ता अख्तियार कर लें। आप अपने आप को ढांचा बना लें, सांचा बना लें। जो कोई भी आपके नज़दीक आएगा उसमें ढलता हुआ चला जाएगा। आपके चंदन के नज़दीक आने के बाद में अगर झाड़ झंकार खुशबूदार बन सकते हैं तो कोई वजह नहीं। अगर आप समुन्नत स्तर के व्यक्ति हैं तो जो भी आपके नज़दीक आए, जो भी आपका सहयोगी बने, जो भी आपका संपर्क में आए खुशहाल न बने, समुन्नत न हो। आत्मकल्याण का भी इसी में रास्ता है और लोक कल्याण का भी इसी में रास्ता है। ये दोनों रास्ते आपको विद्या के आधार पर, ज्ञान के आधार पर आपको मिल सकते हैं। इसलिए शिक्षा की तरीके से विद्या को भी मत समझिए, उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर कोशिश करने में लगे रहिए। समाप्त।